आशिका और आशुतोष के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी और जैसा कि अभिमन्यु पहले ही श्योर था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले कि देर हो जाती, अभिमन्यु ने कल ही आशुतोष से मिलकर उसे सब सच बताने का सोचा था। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा था कि जब अभिमन्यु उन्हें सच बताए तब आशिका भी वहां पर मौजूद रहे। अभिमन्यु ने पृथ्वी को मुंबई की टिकट बुक करवाने के लिए कह दिया था। जहां एक तरफ अभिमन्यु आशिका और आशुतोष के बीच की गलतफहमियां दूर करके उनके परिवार को मिलाना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ तृप्ति के लिए भी कल का दिन बहुत खास था। उसने आकाश के साथ मिलकर प्लान किया था कि वो आशिका को हमेशा के लिए वहां से ले जाए। अभिमन्यु ने आशुतोष को कल मिलने बुलाने के लिए उसे देर रात को कॉल किया था। वो जानता था कि आशुतोष अभी भी जाग रहा है। एक ही रिंग में आशुतोष ने अभिमन्यु का कॉल उठा लिया था। वो जल्दी से बोला, रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? आशुतोष का दिल जोरों से धड़कने लगा और जब तक अभिमन्यु ने जवाब नहीं दिया तब तक वो अपने सीने पर हाथ रखकर बैठा रहा। हाँ, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर कहा। उसने कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर कहा, रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, आपकी बेटी जिंदा है। क्या मेरी आशिका सच में जिंदा है? आशुतोष ने भारी आवाज में कहा। उनकी आंखों में तुरंत पानी आ गया था और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। उनका दिल जानता था कि इस वक्त ये खबर सुनने के बाद उन्हें कितना सुकून महसूस हो रहा है। आशुतोष के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। अब तो आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं मिस्टर राजवंश, मुझे बस एक बार उसका चेहरा देखना है। क्या उसे भी रिपोर्ट और रिजल्ट के बारे में पता है? वो ये जानकर बहुत खुश होने वाली है कि उसकी फैमिली उसे मिलने वाली है। कहीं वो नाराज तो नहीं कि हमने इतने सालों तक उसे ढूंढा नहीं है? आपने उसे बताया ना मिस्टर राजवंश, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। अपनी खुशी में आशुतोष बोले जा रहे थे, जबकि अभिमन्यु पूरी शांति से उनकी हर एक बात सुन रहा था। वो उनके जज्बातों और खुशी को अच्छे से समझ सकता था। उनके रुकने पर अभिमन्यु ने शांत लहजे में कहा, हाँ, उसे रिपोर्ट्स और बाकी चीजों के बारे में पता है, हालांकि वो इसके खिलाफ थी। और मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता मिस्टर सिंघानिया, लेकिन हाँ, वो आपसे नाराज है और आपको उसे मनाने में बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया था कि क्यों ना हम सुबह 10 बजे के करीब मिले, मैं आशिका को भी बुला लूंगा। हाँ, क्यों नहीं मिस्टर राजवंश, आशुतोष ने खुश होकर जवाब दिया। वो आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले अभिमन्यु ने कॉल काट दिया था। आशुतोष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और इसी के साथ उन्हें भी समझ आ गया था कि अभिमन्यु वो सही इंसान नहीं है जिसके साथ वो अपने इन इमोशंस को बांट सकें। पहले ही उसने उनकी काफी मदद कर दी थी। आशुतोष ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त तक काजल सोने चली जाती थी, लेकिन फिर भी अपनी खुशी को बांटने के लिए आशुतोष अपने कमरे में पहुंचे। काजल अब तक सोई नहीं थी। आशुतोष ने न जाने कितने महीनों बाद रात को अपने कमरे में कदम रखा था। उसे इतनी रात को अपने सामने देखकर काजल भी एक पल के लिए हैरान रह गई थी। कोई काम था? काजल ने आशुतोष के पास आकर पूछा तो आशुतोष उसके गले लग गया था। हमारी बेटी जिंदा है काजल, हमारी आशिका जिंदा है, तृप्ति झूठ बोल रही थी। उस दिन हमारी बच्ची बच गई थी और मेरा दिल हमेशा से कहता था कि मेरी आशिका भले मुझसे दूर है लेकिन वो जिंदा है। आशुतोष खुशी में बोले जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तो वहीं आशुतोष की बात सुनकर काजल मानो अपनी जगह पर जमसी गई थी। वो तुरंत आशुतोष से अलग हुई और हैरानी भरी निगाहों से आशुतोष की तरफ देखने लगी। आप सच कह रहे हैं ना, हमारी बेटी जिंदा है? कहाँ है वो? काजल ने अविश्वास से पूछा। हाँ, वो जिंदा है, कल हम उससे मिलने वाले हैं। मिस्टर राजवंश ने इसमें हमारी मदद की है, अभिमन्यु उसे जानता है, आशुतोष ने बताया। अभिमन्यु का जिक्र होते ही काजल के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे और उसे याद आ गया था कि किस तरह अभिमन्यु ने आशी की शादी तुड़वाकर जबरदस्ती अभिमान की शादी तृप्ति की बेटी से करवाई थी। उनके लिए आशिका की कोई पहचान नहीं थी, वे उसे तृप्ति की बेटी समझते थे और उन्हें उसकी हरकतें भी तृप्ति की तरह ही लगती थी। अभिमन्यु राजवंश, काजल ने सख्त आवाज में कहा, वो हमारी आशिका को जानता है। आप श्योर तो है ना कि ये किसी तरह की प्लानिंग नहीं है? मुझे उस पर यकीन नहीं है। पिछली बार उसने तृप्ति की बेटी को अभिमान की पत्नी साबित किया था और क्या पता इस बार किसी भी लड़की को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे और बोले कि वो हमारी बेटी है, उसका नाम भी हमारी बेटी के नाम पर है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह शक कर रही हो। भला अभिमन्यु क्यों तृप्ति की बेटी को हमारी बेटी बताएगा? ऊपर से उसने डीएनए टेस्ट भी करवाया है, आशुतोष ने सिर झटक कर कहा और काजल को समझाने लगे। मुझे तो उसके करवाई डीएनए टेस्ट पर भी यकीन नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं कल उससे मिलने जरूर जाऊंगी। अगर सच में वो हमारी बेटी हुई तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा होगा, काजल ने जवाब दिया। आशुतोष ने उसकी बात पर हामी भरी। आज वो वापस स्टडी रूम में जाने के बजाय काजल के साथ कमरे में था और दोनों आशिका की बातें कर रहे थे। अगली सुबह तृप्ति अपने पूरे सामान के साथ तैयार थी। हालांकि सेलिना उसका साथ नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसी की वजह से वे आकाश के कर्जदार हुए थे और मजबूरी में सेलिना के पास तृप्ति की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सेलिना इस वक्त सामान के साथ खड़ी हुई थी। तृप्ति उसके पास आई और बोली, तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओ, उसके पास ही के होटल में रूम बुक है, और मेरे वहां आने तक इंतजार करो। मैं दोपहर तक वहां पहुंच जाऊंगी और वहां से हमारी एले के लिए फ्लाइट है। मॉम, एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे पता नहीं क्यों इस बार मिस्टर स्काई पर यकीन नहीं है। कहीं वो आशिका के साथ, सेलिना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी बात पूरी होने से पहले ही तृप्ति ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर दांत भींचते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें उस लड़की पर कब से दया आने लगी? और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं डांटा, यहाँ तक कि तुमने हमारे ऊपर अरबों का कर्ज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को दांव पर लगाकर तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती हूँ। लेकिन आशिका आपकी बेटी नहीं है, सेलिना ने नीची नजरें करके कहा। तृप्ति उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। वो उसे चेतावनी देते हुए बोली, सेलिना, आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ। गलती से भी किसी के सामने ये मत कहना कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैंने यकीन करके तुम्हें सच बताया है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। सेलिना ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखकर धीमी आवाज में कहा, आई लव यू मॉम, आई लव यू टू बेटा। तुम्हें आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है, तो दूसरों की बातों में मत आया करो, तृप्ति ने नरम आवाज में कहा और प्यार से उसके बालों को सहलाया। सेलिना ने आगे कुछ नहीं कहा और सामान लेकर वहां से जाने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे और वो तृप्ति की बातों को दोहराते हुए मन ही मन बोली, सही कहा आपने, मुझे आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है। सेलिना को आशिका के लिए बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ निशा भी तृप्ति के बताए अनुसार प्लान में लगी हुई थी। उसे कुछ भी करके आज आशिका को अभिमान के साथ जाने से रोकना था।
जिस दिन से तृप्ति ने निशा को तैयारी करने के लिए कहा था, वो उसी दिन से उसके प्लान पर काम करने लगी थी। वो जानती थी कि आशिका को अभिमान से अलग करने के लिए फिलहाल उसे क्या करना था। निशा पिछले 3 दिनों से अपनी दवाइयां नहीं ले रही थी और एक भी दिन दवाई मिस करने का असर वो अच्छे से जानती थी। पिछले 3 दिनों से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब अभिमान और आशिका ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले, तब अचानक निशा लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आई। उसकी हालत देखकर अभिमान हैरान रह गया था। मॉम, क्या हुआ आपको? और क्या आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप मेडिसिन स्किप नहीं कर सकती हैं। आपने अपना रूटीन चेकअप भी नहीं करवाया ना? अभिमान केयरिंग वे में बोला। दवाइयां खत्म हो गई थीं और तुम शायद भूल रहे हो कि हमेशा डॉक्टर के पास तुम ही मुझे लेकर जाते हो। इस बार तो तुम्हें मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है। तुम नहीं जा सकते तो एक काम करो, डॉक्टर को घर पर बुला लो, निशा ने धीमी आवाज में कहा। अभिमान निशा से नाराज था, इसलिए वो उससे बात तक करने नहीं गया था और ना ही उसे निशा की नाराजगी से फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब निशा को इस तरह बीमार देखकर उसे खुद के फैसले पर पछतावा हो रहा था। डॉक्टर के घर पर आने से कुछ नहीं होगा मॉम, आपके फिर से सभी टेस्ट करवाने होंगे, और कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, आपने आकर मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, अभिमान ने निशा का हाथ पकड़कर कहा और फिर उसने आशिका की तरफ देखा। आशिका उसे रोकना नहीं चाहती थी क्योंकि बात उसकी माँ की थी। उसने हल्का मुस्कुराते हुए अभिमान को निशा के साथ हॉस्पिटल जाने का इशारा किया। अभिमान निशा को लेकर वहां से निकल गया था और जाने से पहले उसने एक बार पलटकर आशिका की तरफ देखा। आशिका की नजरें भी अभिमान पर ही टिकी हुई थीं। न जाने इतनी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, आशिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा और बाहर जाने की बजाय वापस कमरे में चली गई थी। जैसे ही निशा गाड़ी के अंदर बैठी, उसने तृप्ति को मैसेज कर दिया था। उनके निकलने के लगभग आधे घंटे बाद तृप्ति ने आशिका को कॉल किया। आशिका तृप्ति से कितनी भी नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन उसकी कॉल को कम ही इग्नोर किया करती थी। ऊपर से अब तो वो अभिमान के पास थी, तो उसे तृप्ति का कोई डर नहीं था। आशिका ने बिना किसी हिचकिचाहट और डर के तृप्ति का कॉल रिसीव किया। बोलिए, क्या कहना है, आशिका ने आंखें घुमाकर कहा। नाराज हो अपनी माँ से, तृप्ति ने अचानक कहा। आशिका के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, आखिरी बार आपने मुझसे इस तरह प्यार भरे लहजे में तब बात की थी जब आप मुझे उस माफिया से शादी करने के लिए लेकर जा रही थी। मुझे आप पर यकीन नहीं है। आशिका उसे ये भी कहना चाहती थी कि उसे तो इस बात पर भी यकीन नहीं है कि वो उसकी असली माँ है या नहीं। मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकती हूँ और गलती मेरी ही है, तृप्ति ने गहरी सांस लेकर कहा। वो मायूस स्वर में बोली, मैं आज हमेशा के लिए सेलिना के साथ वापस जा रही हूँ। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको एयरपोर्ट तक छोड़कर आऊं? आशिका ने रूखे तरीके से जवाब दिया। उसकी इस बदतमीजी पर तृप्ति को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल उसके पास ही अपमान का घूंट पीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, जाने से पहले बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एयरपोर्ट की टिकट की फोटो भेज रही हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में टिकट्स मेरे और सेलिना के नाम पर बुक हुए हैं। मेरी वजह से यहाँ तुम्हें सब गलत समझते हैं और मैं तुम्हें इसका कारण भी बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि तुम्हें सब कुछ कैसे ठीक करना है ताकि तुम सबका दिल जीत सको, तृप्ति ने अपनी तरफ से दांव खेलते हुए कहा। जिस तरह से निशा और सिंघानिया फैमिली आशिका के साथ बर्ताव कर रहे थे, उससे तृप्ति को अच्छे से पता था कि उन्होंने अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। और आपको किसने कहा कि मुझे सबका दिल जीतना है? मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिसेस हिल। अब आप यहाँ से जा ही रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कभी लौटकर मेरे सामने मत आइएगा, आशिका ने जवाब दिया। वो कॉल काटने ही वाली थी कि तभी तृप्ति जल्दी से बोली, हाँ नहीं आऊँगी, तभी आखिरी बार मिलने के लिए बुला रही हूँ। क्या इतना भी डिजर्व नहीं करती कि आखिरी बार अपनी बेटी को देख सकूँ? अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपने पति को साथ ले आना या किसी और इंसान को जो तुम्हारी सिक्योरिटी का ख्याल रखे। मिस्टर स्काई तो कब के यहाँ से जा चुके हैं। तृप्ति बार बार आशिका को मिलने के लिए बुला रही थी। उसने जानबूझकर अभिमान को साथ लेने की बात कही क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अभिमान निशा के साथ बिजी है, वो उसके साथ नहीं आएगा। ऊपर से स्काई के बारे में भी उसने सच कहा था, आशिका ने भी पिछले कुछ दिनों से उसे नहीं देखा था। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, आ जाऊंगी, आशिका ने छिड़कर जवाब दिया। तृप्ति से पीछा छुड़ाने का उसे यही रास्ता नजर आ रहा था। तृप्ति ने उसे थैंक्स कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। उसने तुरंत स्काई की बताई हुई लोकेशन भेज दी थी। आशिका के लिए मुंबई नया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि तृप्ति उसे जहां बुला रही है वो जगह शहर से दूर है और वहां आसपास ज्यादा आबादी भी नहीं थी। तृप्ति से बात करके आशिका हटी ही थी कि उसके पास अभिमन्यु का कॉल आ गया। अभिमन्यु को किसी तरह की बहस नहीं करनी थी, उसने आशुतोष को भी सच बता दिया था और उसने आशिका के कॉल रिसीव करते ही बात को बिना घुमाए फिराए कहा, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं और मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मुझे ना नहीं सुनना है आशिका, अपना सारा काम छोड़कर मैं मुंबई आ रहा हूँ। उन्हें सच जानने का हक है और तुम्हें भी पूरा हक मिलेगा। तुम उन्हें एक्सेप्ट करना चाहो या नहीं, मुझे बताओ कि मिलने के लिए कौन सी जगह डिसाइड करें। अजीब बात है, आज तृप्ति भी मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है, वो हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही है, आशिका के मुँह से निकला। तो फिर इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि तृप्ति के गुनाहों का सच मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया के सामने आए। मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहीं पर उन्हें बुला लूंगा और तृप्ति को निकलने मत देना, अभिमन्यु ने उसे समझाया। तृप्ति यही सोचकर बैठी थी कि वो आशिका को अपने पास बुलाकर फंसा लेगी, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु और आशिका पहले से ही उसके खिलाफ एक जाल के साथ तैयार बैठे हैं। आशिका ने अभिमन्यु को अपनी लोकेशन भेज दी थी और वो तुरंत तृप्ति से मिलने के लिए निकल गई थी।